सो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय उसके श्लोक 4 पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्लैब्यम मा स्म गमा पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, कि ये नपुंसकता तुम्हारे में कैसे आ गई। हाँ, ये तो क्षुद्रों की निशानी है, हृदय दौर्बल्य को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ परंतपा, हे अर्जुन आप उठो। तो अर्जुन इस बात को काउंटरैक्ट कर रहा है श्लोक 4 में, और अर्जुन बोल रहा है कि मैं नपुंसक नहीं हूँ, प्लीज प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं मतलब क्लैब्यम वाला ऐसा नहीं है कि मैं कायरता के कारण ऐसा बोल रहा हूँ। तो अर्जुन कह रहा है, अर्जुन वाचा कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषु भी प्रति योत्स्यामि पूजार्हा अरि सूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं नपुंसकता के कारण ऐसा नहीं कि मैं युद्ध से हट रहा हूँ, बट बात रिस्पेक्ट की है। बात यह है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो पूजनीय है, और तीर चलाने की बात छोड़ो, उन पे उनको कड़वे वचन भी नहीं बोल सकते। तो मतलब ऐसा कैसे है। और कृष्णा, अगर हम आपकी बात भी करें तो आप मधुसूदन हो, आप संदीपनी सूदन या उग्रसेन सूदन नहीं हो। आपने भी अपने दादा, अपने गुरु, उनका कभी वध नहीं किया, आपने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है। जब आप मधुसूदन हो तो आप मुझे द्रोणाचार्य सूदन या भीष्म सूदन क्यों बनाना चाह रहे हो? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मेरे को आप गाइड कीजिए, मैं मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। सो भगवान कृष्ण ने बोला कि मतलब आप आखिर मतलब क्यों लड़ना नहीं चाह रहे। तो अर्जुन बेसिकली कोट कर रहा है कि प्रति बध्नाति ही श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रमा, कि अगर कोई पूज्य व्यक्तियों पर प्रहार करता है, चाहे वो हथियार से है चाहे वाणी से है, तो उसके वो बंधन का कारण बन जाता है। हाँ, तो अच्छा नहीं होगा कि उन पे मतलब हथियार से वार किया जाए उनके ऊपर। सो भगवान कह रहे हैं कि देखो आप मतलब जब वो युद्ध करने के लिए तैयार है, फिर तुम क्यों नहीं कर रहे युद्ध? तुम भी मतलब उनका प्रतिकार करो, अगर वो लड़ना चाह रहे हैं तुम भी लड़ो। नहीं, उनको तो मैं उनके अगेंस्ट तो मैं जोर से बोल भी नहीं सकता, तो मैं मतलब लड़ कैसे लूँ मैं? मुझे ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पर जो अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। और भगवान कृष्ण ने बोला, अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मान ली कि भैया आप लड़ना नहीं चाहते, तो चलो ये बताओ कि आप फिर मतलब अगर लड़ोगे नहीं, लड़ाई नहीं करोगे, तो लड़ाई करने का मतलब है आपको भीष्म द्रोण पर वार करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि सामने वही खड़े हैं, वही युद्ध का संचालन कर रहे हैं, तो फिर मतलब कैसे बात बनेगी? तो जीवन निर्वाह कैसे करोगे ये समझाओ। तो अर्जुन ने अगला श्लोक बोला उसका उत्तर देने के लिए, कि उन्होंने बोला, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। और शास्त्रों में बोला है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गुरु निंद्य कर्म में रत है, जो विवेक शून्य है, उसको त्यागने में कुछ भी हानि नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको त्यागा नहीं जा सकता। और महाभारत 5.178.24 में ये लिखा हुआ है, गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्यकार्यम अजानतः उत्पत प्रतिपनस्य परित्यागो विधीयते। जो गुरु अहंकारी है, जिसको सही गलत का पता नहीं है, जो विवेक शून्य है, और जो पापाचार में लिप्त है, हाँ, उसको त्यागने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना, उसको त्याग देना चाहिए। तो महाभारत में ये बात लिखी है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि स्टिल यू नो, आप मतलब कुछ भी कहें, हैं तो मेरे गुरु ही, उनकी गोदी में खेला हूँ मैं, मतलब कैसे मैं उनके ऊपर हथियार चला दूँ, मतलब बात क्लियर ही नहीं हो रही एकदम से। हाँ, मेरा तो हौसला नहीं हो रहा कि उनके ऊपर मैं हथियार से वार कर दूँ, हाँ, जिनके साथ मैं खेला हूँ। सो तो अर्जुन कह रहे हैं कि वो तो महानुभाव है। हाँ, आप ठीक है, महाभारत में लिखा है कि जो अर्थ कामान, हाँ, और भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को बोला था, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजा बद्धोऽस्मि अर्थेन कौरवै। कि व्यक्ति धन का दास है, धन किसी का दास नहीं है। तो हे राजन, मैं धन के द्वारा कौरवों से बंधा हुआ हूँ। हाँ, सो महाभारत में, महाभारत 6.41.36 में भीष्म पितामह अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ, सो कृष्ण कह रहे हैं कि भैया, अब मतलब एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जो भीष्म है, द्रोण है, ये लोग कंटैमिनेट हो चुके हैं। हाँ, तो वो कंटैमिनेट है तो उनका वध करने में कुछ भी मतलब हर्ज नहीं है। हाँ, तो अर्थ कामान, हाँ, क्योंकि वो पैसे के लिए, वेल्थ के लिए वो लोग लड़ाई करने से मतलब चूक नहीं रहे, लड़ाई करने से परहेज नहीं कर रहे, तो मतलब उनका वध करना कुछ ऐसा इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, है ना। तो सो अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मैं उनका वध कर देता हूँ, हाँ, अगर मैं उनका वध कर देता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जन्म भी बेकार हो जाएगा, अगला जन्म भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि वध कर दिया तो ये जन्म में भी मैं उनके बिना रहना पड़ेगा, और अगला जन्म भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं भोगूंगा वो रुधिर प्रदिग्धान, वो उनके खून से सनी होगी। तो मुझे तो कुछ भी पॉजिटिव दिख नहीं रहा, तो बेस्ट यही होगा कि मैं भीख मांग के गुजारा कर लूँ। हाँ, यही मुझे तो यही ठीक लग रहा है। हाँ, और इसको आगे अपना एक लास्ट आर्गुमेंट अर्जुन दे रहे हैं युद्ध नहीं करने के लिए। हाँ, अपना एक लास्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, ना चैतत विद्मह कतरन्नोगिरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा ना जीजी विषामस ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और हे कृष्णा, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। और शास्त्रों का जो वचन है क्षत्रियों के लिए, शास्त्रों का वचन है कि अगर युद्ध के लिए बुलाया जाए तो आप पीठ नहीं दिखा सकते। हाँ, आपको सामने जाके युद्ध करना पड़ेगा आपको। ये क्षत्रियों के लिए नीति है, निर्धारित है, कि आप पीछे नहीं हट सकते आप। हाँ, आपको युद्ध करना पड़ेगा। अगर आहूत अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है, हाँ, तो बोलते हैं ना, अगर तो लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने आखिर जुआ क्यों खेला। हाँ, क्योंकि अगर एक क्षत्रिय को इनवाइट किया जा रहा है तो वो क्षत्रिय जो है वो जुआ और युद्ध उनसे पीछे नहीं हट सकता। हाँ, उसको जाकर लड़ना ही पड़ेगा उसको। हाँ, सो अब उनको इनवाइट किया तो उनको जाके लड़ना पड़ा, जाके उनसे जब उसको इनवाइट किया कि आप आके हमारे साथ जुआ खेलो, द्यूत खेलो, तो उसको जाना पड़ा, क्योंकि बिना जाए बात नहीं बनेगी, क्योंकि क्षत्रियों के लिए ये शास्त्रोचित है। हाँ, और इसके द्वारा युधिष्ठिर महाराज ने महाराज से पूछा कि भैया आखिर आपने ये जुआ खेला ही क्यों। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भैया मैं दिखाना चाह रहा था कितनी खराब चीज है, देख लो, तो इसीलिए हमारे शास्त्रों का आदेश है कि जो चार नियम बोले जाते हैं उसमें से एक नियम ये भी है कि आप जुआ मत खेलो, द्यूत जो है गैम्बलिंग, हाँ गैम्बलिंग जो प्रोहिबिटेड है, वो निषेध है गैम्बलिंग, है ना। सो खैर, अर्जुन जो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने मान लिया कि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना मेरा धर्म है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी क्लियर नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अब सपोज लड़े, वार भी कर दिया गुरु पे, हार भी गए, तो मतलब माया मिली ना राम ना, मतलब धन की प्राप्ति हुई और धर्म की हानि भी हो गई, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन अर्जुन आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं जीतोगे, आपका जीतना तो मतलब श्योर है, क्योंकि आप धर्म में स्थापित हो और आपके पास मतलब शक्ति से निवेशित हो आप, आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो नहीं जीतोगे, तुम 100% जीतोगे। और भगवान आगे हम देखेंगे, भगवान अर्जुन को ये सूचित करेंगे कि मैं सबको मार चुका हूँ, सिर्फ तुम श्रेय क्लेम कर लो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, है ना। सो अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन मान लिया मैं जीत जाऊंगा, मान लिया मैंने उनको हरा दिया, हमने हरा दिया सबने मिलके, लेकिन अगर हम परिणाम देखेंगे तो परिणाम जो है वो परिणाम के दृष्टि से तो हमारी हार है, क्योंकि अगर आपके पास बंधु बांधव नहीं है तो आप एंजॉय किसके साथ करोगे? तो जीत भी लिया तो भी एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगी, और हमारी तरफ के, उनकी तरफ के, सब तरफ के लोग जो है वो उनका वध हो जाएगा। तो मतलब किसके साथ मिलके वस्तुओं का भोग करेंगे? हाँ, सो ये जो चीज़ है, प्रभुपाद, अगर आप तात्पर्य देखें तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसका अपने मन तथा इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है और विरक्ति दिखा रहा है। वो कह रहा है मैं भीख मांग के जी लूंगा, तो वो विरक्ति दिखा रहा है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा है कि अरे यार राजमहल छिन जाएगा, नौकर चाकर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, अब आदत पड़ गई है इनकी। हाँ, तो वो कह रहा है परवाह नहीं है मेरे को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो सारी बात है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सो निष्कर्ष ये निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य हैं, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना, ज्ञान का जो प्राप्त करना वो कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। हाँ, सो अर्जुन में भौतिक गुण तो थे ही, साथ ही वो दैवी गुणों में भी दक्ष था। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, हाँ, कि तस्माद एवं विच्छांत दांत उपरतस्तितिक्षु सिद्धान्वितो भूत्वात्मनि एवात्मानं पश्येत, कि जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जिसका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो संसार के प्रति उदासीन है, विरक्त है, जो तितिक्षा, जो तितिक्षु है, जो टॉलरेंट है, और जो श्रद्धावान है, वो परम परमात्मा को अपने में देख सकता है। हाँ, सो पिछले जो अध्याय है, अध्याय एक, उसके 32वें श्लोक पे अर्जुन ने इंद्रिय और मन पे कंट्रोल की बात की थी, और उसने कहा था कि राज्य का क्या यूज है, भोग का, जीवित रहने का अपने को क्या, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये इस वाक्य के द्वारा श्री बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि अर्जुन दिखा रहा है कि उसका अपने इंद्रियों और मन पर कंट्रोल है, और अर्जुन उपरति उदासीनता, विरक्ति दिखा रहे हैं पिछले अध्याय के 35वें श्लोक में। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनको मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों संसार का राज्य क्यों ना मिल जाए। तो अर्जुन को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इस वचन से हम देख सकते हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है राज्य प्राप्त करने के लिए। अर्जुन अभी भी यहाँ खड़ा होकर धर्म अधर्म की विवेचना कर रहा है, सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और अर्जुन इसी अध्याय में, इसी श्लोक में तितिक्षा, टॉलरेंस का प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग के जी लूंगा, और जो संसार के द्वैत हैं, जो डुअलिटीज हैं, उसको सह लूंगा, है ना। और तो श्रद्धा कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है? हाँ, सारी बातें ठीक हैं कि ज्ञान आ गया, चलो मन इंद्रियों पे कंट्रोल आ गया, उदासीनता दिख गई, तितिक्षा दिख गई, तो ज्ञान, तो श्रद्धा कहाँ है? अभी तक श्रद्धा नहीं दिख रही। हाँ, अभी तो अर्जुन किसी बात पे भी टिक नहीं रहा, किसी बात को मान नहीं रहा। तो जो श्रद्धा है, अर्जुन और श्रद्धा दिखा रहा है 7वें श्लोक में, और 7वें श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और वो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट है, और उस श्लोक में, 7वें श्लोक से जो है उसके बाद आप देखेंगे अर्जुन की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। हाँ, पूरी लाइफ चेंज होने वाली है अर्जुन की। सातवें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अभी हमने इस लेक्चर में हमने कवर किया भगवत गीता श्लोक चैप्टर 2 श्लोक संख्या 4, 5 और 6। श्रील प्रभुपाद की जय।